الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، كلكي مجلس سهم نے گفتگو شروع کی ہے قلت منام پہ، نیند میں کمی کرنا. تو مشائق کا بتایا ہوا جو نسخہ ہے اس میں چار چیزوں میں کمی کرنی ہے: قلت طعام، کھانے پینے میں کمی، قلت کلام، بات چیت میں کمی، قلت منام، نیند میں کمی، اور قلت اختلاط مع الانام، لوگوں سے میل جول میں کمی. یہ تمام چیزیں عام طور پہ سمجھی جاتی ہیں کہ یہ سالکین طریقت کے لیے ہے، مشائخ سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں اصلاح کے لیے، یہ چاروں چیزیں ان کے لیے ہیں. مگر اگر قرآن اور حدیث کو دیکھا جائے تو یہ چاروں چیزیں تمام مسلمانوں کے لیے ہیں، اس کا فائدہ ہر ایک کے لیے ہے. قلت طعام اور قلت کلام پہ ہم نے کافی ساری گفتگو کی، اور کل کی مجلس میں ہم نے قلت منام پہ گفتگو شروع کی، نیند میں کمی کرنا. اس حوالے سے ہم نے یہ عرض کیا کہ مشائق کا مقصد یہ بالکل نہیں کہ انسان نیند پوری نہ کرے یا جتنے اس کے جسم کو ضرورت ہے اس کو پورا نہ کرے. نیند کو ریگولیٹ کرنا، نیند کو صحیح طرح سے کرنا کہ انسان اپنے دینی فرائض بھی پورے کر لے اور اپنی دنیاوی فرائض بھی پورے کر لے، یہ اصل مقصد ہے قلت منام کا. کل کی مجلس میں ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ دو قسم کے زیادہ سونے والے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو سوتا تو رات ہی میں ہے مگر صبح اپنے وقت پہ اٹھتا نہیں ہے، فجر کی نماز قضا کر بیٹھتا، اور دوسرا وہ شخص ہے جو پوری رات جاگتا رہتا ہے، دیر سے سوتا ہے، کئی مرتبہ فجر کے قریب اور کئی مرتبہ فجر کی نماز کے وقت کے بعد سوتا ہے. تو یہ زیادہ بڑا باطنی مریض ہے کہ رات بھر جاگتا ہے اور پھر دن بھر سوتا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے رات کا مقصد بیان کیا، اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، کہ اللہ نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ اس رات میں تم آرام کرو. تو راتوں میں آرام نہ کرنا یہ قرآن کی ترتیب کے خلاف ہے، اس سنت کے بھی خلاف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک معمول کہ آپ رات کو عشاء کے بعد فوراً سونے کی ترتیب رکھتے. تو رات کو آرام کرنا یہی قرآنی ترتیب ہے، یہی سنت کی ترتیب ہے. دو طرح کے زیادہ سونے والے، ایک وہ جو رات میں وقت پہ سو جاتے ہیں مگر صبح فجر پہ نہیں اٹھ پاتے، وہ بھی زیادہ سونے والا، اور وہ بھی ایک مریض سمجھا جائے گا. مگر ایک دوسرا ہے جو رات بھر جاگتا رہتا ہے اور پھر صبح کے قریب جا کے سوتا ہے، یہ زیادہ بڑا مریض سمجھا جائے گا. رات کو نیند زیادہ کرنے والا یا رات بھر جاگنے والا، اس رات کو نیند میں نہیں استعمال کرنے والے کے چند نقصانات مشائخ نے بتائے ہیں، اور ان نقصانات میں سے پہلا نقصان یہ ہے کہ جو بندہ رات کو دیر تک جاگے گا फजर जरूर कजा करेगा, और फजर की नमाज पढ़ने वाला और ना पढ़ने वाले में जमीन आसमान का फर्क है। हत्ता के फजर की जो दो सुन्नतें हैं, हदीस पाक में आता है कि जिसने ये दो सुन्नतें पढ़ ली से वो नसीब हो गया जो दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे भी बढ़ के है। हदीस पाक में आता है कि जिसने फजर की नमाज जमात से पढ़ ली गोया के वो आधी रात इबादत करता रहा। तो रात को जागने का सबसे बड़ा नुकसान तो फजर की नमाज से हाथ धो बैठना है। हाथ और रात को जागते रहने का दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि ऐसा शख्स जो है उसे अपने औकात पे कोई कंट्रोल नहीं है, उसके जिम्मे कोई काम नहीं लगाया जा सकता, न दीनी काम कर सकता है न दुनियावी काम कर सकता है, ना वो पढ़ाई लिखाई सही तरह से कर सकता है ना ही वो काम कारोबार सही तरह से कर सकता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना यूजलेस बम, बगैर किसी मकसद की जिंदगी गुजार। तो बहुत सारे नौजवान आजकल इस बीमारी के शिकार हैं। खाना पीना घर से मिलता है, इसकी फिक्र नहीं है, जिम्मेदारी सर पे नहीं है, और माँ बाप की शफकत और मोहब्बत की वजह से रातों को जागते हैं और फिर दिन भर सोते हैं और दिन भर सोने में भी फिर गुस्सा भी दिखाते हैं। और कुछ नौजवान तो अल्लाह अकबर ऐसे कि जब वो सोते हैं तो दुनिया की कोई चीज उनको नहीं जगा सकती। हमारे एक जानने वाले रिश्तेदार हैं, उनका बेटा भाई इम्तिहान दे के आया तो उस दिन रात को जागा था, तो सुबह इम्तिहान जब दे के आया तो इम्तिहान दे के दोपहर में सोया, रात कम नींद की थी या ज्यादा जागा हुआ होगा। तो जब वो दोपहर में आके सोया तो वो ऐसे सोया कि दोपहर से लेके रात खाने के वक्त तक सोता रहा। तो अब वालदा ने कहा कि भाई उसको जगाओ, खाना तो खा ले कम से कम। उसको जगाने गए तो कमरा लॉक था, नॉक किया तो जाग ही नहीं रहा। बहुत देर तक नॉक करते रहे तो नहीं उठा, हत्ता के दरवाजा जोर जोर से उन्होंने, जिसको कहते हैं ना दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया, फिर भी नहीं उठ। हत्ता के घर में से किसी ने महसूस किया कि दरवाजे के कुछ हिस्से में से अंदर नजर भी आता है, यानी थोड़ा सा नजर आता है। तो उन्होंने उसमें से देखा तो वो बेड पे लेटा हुआ भी इस तरह था कि उसका एक हाथ बेड से नीचे था और एक पैर भी बेड से नीचे था, तो जाहिर ऐसा लग रहा था जैसे फौत हो गया है। इस हाल में उसकी बहन ने जब उसको देखा तो वो गिर के बेहोश हो गई कि मेरा भाई फौत हो गया है। और धब धब किए जा रहे हैं और उसकी आंख खुल नहीं रही है। हत्ता के एक रिश्तेदार आए और वो एक बहुत बड़ा कोई पत्थर नुमा चीज लेके आया और उन्होंने जाके दरवाजा जोर से एक्चुअली तोड़ ही दिया। जब वो दरवाजा टूटा और जैसे एक बम फटता है उस तरह की आवाज आई, उस वक्त आंख मलते हुए आया खड़े होके कि क्या हुआ है। तो उसके अब्बा ने उसको फिर एक जोरदार लगा भी दी कि यहां तेरी बहन बेहोश हो गई है, हम तुझे इतनी देर से जगा रहे हैं, तेरी आंख नहीं खुल रही है। तो नौजवान वालदैन की मोहब्बत की वजह से उसका नाजायज फायदा उठाते हुए रातों को जागते हैं। और फिर दिन भर सोते हैं। और अगर स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं तो वहां भी नागा करते हैं, और कई मर्तबा किसी भी काम के नहीं रहते। और अगर उनको कहा जाए कि अपने स्केड्यूल को सही करो तो लड़ाई झगड़ा करते हैं फिर आगे से। तो सही जिसको कहते हैं ना, जिसकी तारीफ यूजलेस बम की है, वो ये इस किस्म का नौजवान है कि जो बगैर किसी मकसद की जिंदगी गुजार रहा। तो मशाइख ने फरमाया जो इस्लाह के लिए आता है उसकी जिंदगी के मकासद में से एक मकसद ये होना चाहिए कि वो अबुल वक्त बने, इब्नुल वक्त ना बने। यानी उसको हालात ना चला रहे हो, वो अपने वक्त पे पूरा कंट्रोल रखता हो, उसकी जिंदगी के अंदर डिसिप्लिन हो, उसकी नमाज पाबंदी से हो, उसने जिम्मे जो काम है वो पाबंदी से हो, वो अपने वालदैन के अपने घर के हुकूक अच्छी तरह से अदा करे, दूसरों की खिदमत भी करे, कमाने रोजी कमाने का मामला है तो वो भी अच्छी तरह से करे, और तालीम का मामला है तो वो भी अच्छी तरह से करे। और ये वही शख्स कर सकता है जिसकी नींद उसके कंट्रोल में होती है। और जो शख्स नींद को बिल्कुल खुला छोड़ देता है, रातों को कई मरतबा जाग रहा है, या अगर रातों को जल्दी भी सो रहा है तो सुबह जल्दी नहीं उठ रहा, तो उसके 5 नुकसान। तो पहला नुकसान ये कि फजर की नमाज जाती है, दूसरा नुकसान ये है वो किसी काम के काबिल नहीं रहता, तीसरा नुकसान यह है कि उसे हमेशा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, क्योंकि वो ऐसे औकात में सो रहा होता है जब पूरी दुनिया जाग रही होती है। उसको कहा जाएगा ना कि भाई अब ये सुबह 11 बजे आपने फला जगह आना है, वो इम्पॉसिबल है उसके लिए आना, उसके लिए तो रात के बीच का वक्त ही है। अब वो किसी को कह तो नहीं सकता कि ये तो मेरी रात के बीच का वक्त है, सुबह 11 बजे, तो वो अपने काम करेगा नहीं, बस शर्मिंदगी इख्तियार होगी। तो जो इस तरह से नींद को रेगुलेट नहीं कर सकता, जिसकी नींद बेदरेग और जिसकी नींद के ऊपर कोई कैप ही नहीं है, वो हर वक्त शर्मिंदगी के आलम में होता है, हर वक्त लोगों को डॉज कर रहा होता है। मगर इससे भी बड़ा एक नुकसान है कि जो काफी अरसे तक ये काम करता है ना, और जो अपने नींद का गुलाम बन चुका होता है, ऐसा शख्स जो है उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन हो जाता है, अकेला रहना उसको ज्यादा अच्छा लगता है, किसी से कोई ताल्लुक ना, ताकि ना कोई मुझे कुछ कहे, ना कोई मुझे कहे कि जी आपने उठना है, ना मुझे कोई काम जिम्मे लगा है, ना मेरे को ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी आ जाए कि मैं दिन के नींद के औकात में मुझे कोई काम करना पड़े। तो ला महला उसके हर एक से ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं। वो बेचारे वालदेन जो कि मजबूर हैं इस ताल्लुक को रखने में, वो इस ज्यादती के बावजूद भी जाहिर ताल्लुकात रखे बैठे होते हैं, और नौजवान ये समझ रहा होता है कि वो सही कर रहा है। तो नींद को बेमहार छोड़ देना ये एक बहुत बड़ी गलती है, एक बहुत बड़ा नुकसान है। और जहां सालिकीन तरीकत की और बहुत सारी चीजों में तरबियत की जाती है, नींद को भी किसी न किसी काबू में लाया जाता है। दो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट किसी शेख से बैठ हुए, शेख को महसूस हुआ कि जी नींद के ऊपर कंट्रोल नहीं करते, तो शेख ने जरा उनके ताल्लुक तो था, मोहब्बत भी थी शेख से, तो इस मोहब्बत को मशायख इस्तेमाल करके बहुत सारे काम निकलवाते हैं। रमजान के दिन थे, दोनों की जिम्मेदारी को काम लगा दिया कि ये काम है वो काम है, सब फ्लायर बनाना है और ये कैलेंडर बनाना है, तो पूरी रात जो है वो लगे रहे, फिर सहरी हुई, फिर सुबह उठने के बाद भी चंद घंटे की नींद करके फिर उनके जिम्मे काम, दिन भर काम, रात भर काम, अगले दिन फिर पूरी रात काम, और फिर फजर के बाद जो है वो फ्लाइट थी एक शहर से दूसरे शहर, और ये दोनों जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे उन्होंने शहर के साथ फ्लाइट लेनी थी। तो जब 2 रातें नींद नहीं हुई और फिर नींद मिली भी तो बहुत ही टुकड़ों में, घंटा 1.5 घंटा, तो एयरपोर्ट पे क्या होता है कि जी आप जब बोर्डिंग पास ले लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए बोर्डिंग लाउंज में कभी घंटा मिल जाता है, फ्लाइट की जाने में थोड़ा टाइम होता है। तो ये जो दोनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे ना, एक इधर गिर रहा था नींद से, एक इधर गिर रहा था नींद से। अब वो समझ रहे थे कि हजरत को हमारे ऊपर बड़ा तरस आ रहा होगा, और वो हजरत तो है उनका काम ही यही था कि नींदों को सही करना। तो हजरत तो बड़े ही मुस्करा के उनसे पूछा, नींद आ रही है ना? हजरत बहुत नींद आ रही है। हमने फरमाया बहुत अच्छा है कि बहुत नींद आ रही है, हमें भी हमारे शेख ने जगाया, हम भी आपको जगाएं। तो मशायख के यहाँ जहाँ और बहुत सारी चीजों की इसलाह होती है, इस गलत रविश की भी इसलाह होती है कि बेदरेग नींद करते रहना, कि इंसान किसी काम के काबिल ना रहे, ये भी बहुत बड़ी इसलाह तलब चीज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस बीमारी से महफूज फरमाए। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह। الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
وعليكم
السلام
السلام ورحمة الله
ورحمة
وبركاته.
الله وبركاته.